इसके बाद एक और खूबसूरत सूरत शुरू होके ख़त्म भी होगी इसी पारे में, और वो है सूरत लुकमान। 34 आयात है इसकी। पहली 5 आयतों को देखे तो कुरान हकीम से हिदायत किन को मिलती है, उनका तذकरा। हम सब अपने ऊपर लेकर सोचें, क्या हम इस वक्त कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हिदायत आए? और आप देखिए कि सूरत का नाम भी बड़ा अहम है। वो शख्स जो नबी नहीं थे, सहाबी नहीं थे, उनके नाम पे सूरत, ये क्यों? अरबों में लुकमान नाम की एक शख्सियत बड़ी मारूफ थी, जिसको हकीम लुकमान आप कह लीजिए। हमारे यहाँ जैसे हकीम उम्मत का अल्लामा इकबाल, उनकी शेर शायरी, इसको बड़ी अहमियत हासिल है। तो अरबों के पास एक सहीफ़ा लुकमान के नाम पर बुकलेट टाइप की कोई चीज़ भी होती थी। अल्लाह ने उस शख्स का तذकरा क्यों किया, अभी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं शुरू की 5 आयतें, कुरान हकीम से हिदायत किन को मिलती है। बड़ी अहम बात है, इस पर गौर कीजिएगा। हर बंदे को कुरान से भी हिदायत नहीं मिलती। हिदायत सिर्फ उसको मिलेगी जो हिदायत की नीयत से इसको सुनेगा। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये आयतें हैं हिकमत वाली किताब की। हुदा व रहमा, इसमें हिदायत भी और रहमत है सबके लिए, नहीं लिल मुहसिनीन। मुहसिनीन को कौन होते हैं मुहसिन? अल्लज़ीन यकीमून अस्सला, वो लोग जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वो आखरत पे यकीन रखते हैं। उलाइका ला खुदम मिन रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। आपको कुरान की कौन सी सूरत याद आई इन आयात को पढ़कर? सूरत बकरा। सूरत लुकमान का आगाज़ सूरत बकरा से बहुत मिलता है। फिर उसके बाद कुरान हकीम के हवाले से दो तर्ज़े अमल, आयत 6 से 9 में, वमिन अन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। लहवल हदीस की बात है। लहवल हदीस क्या है? गाफिल करने वाली चीज़ें। लहवियात और लगवियात दो लफ्ज़ लिख लें, लग्व और लहव, ये दोनों मिलते हैं। लव कहते हैं चिड़िया का चू चू करना, बेकार चीज़ें, कलाम दिल फरेब, गाना बजाना, किस्से कहानियाँ, और इसी तरह से शैतानी आवाज़ें, क्योंकि दो आवाज़ों को मलून कहा गया हदीस में, एक वो जो खुशी के वक्त पे मज़ामीर की सूरत में हो और दूसरी मुसीबत के वक्त में जज़ा व फ़ज़ा के तौर पे, मरसिए और दुख और बातें करना। ये हैं वो आयतें जिस पे मौसिकी के मौजू पे लोग बात करना और सुनना पसंद करते हैं। तो मौसिकी की क्या हैसियत है? पहली बात देखिए कि रिदम तो कायनात में है बहुत सारी चीज़ों में, फिर मौसिकी अपनी असल के एतबार से तो हराम नहीं है। अल्लाह के नबी ने दफ़ बजाने को जायज़ करार दिया। फिर इसी तरह से कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो अनअवॉइडेबल होती हैं, परिंदों के चहचहाने में क्या खूबसूरती होती है, कभी झरनों के पानी को महसूस कीजिए। तो सवाल ये कि फिर मौसिकी हराम है तो कौन सी हराम है? वो मौसिकी, वो साज और आवाज़ जिसमें शैतानी बातें हैं, और गाना शैतान का एक हथियार है। हदीस से पता चलता है कि गाना दिल में निफाक पैदा करता है। अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के अजाबों की बात है, अहादीस सुन लीजिए, तो मैं इसको समअप कर देती हूँ। इब्ने माजा की रिवायत है 4020, अबू मालिक अल अशरी रावी है, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे, यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो इसका कोई और नाम रख लेंगे, यानी शराब कह के नहीं पियेंगे, कोई और नाम रख लेंगे। और आज आप सोचिए क्या क्या नाम रखे हुए हैं, वो इसका कोई और नाम रखेंगे, इनको गाने वालियाँ साज बजा कर गाने सुनाएंगी, और अल्लाह ताला इन्हें ज़मीन में धंसा देगा और इनमें से बास को बंदर और खिंजीर बना देगा। अब आप क्या करें? पहली बात देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनअवॉइडेबल हैं। आप जहाज़ में बैठे, म्यूज़िक चल रहा है, शॉपिंग के लिए गए, मॉल में म्यूज़िक चल रहा है, आप कहीं अपनी ज़रूरत के किसी काम के लिए गए, इवन आप कुरान पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं, किसी जगह से रुक रहे हैं, किसी जगह से गुजरते हैं, तो म्यूज़िक है। अब जो आपके इख्तियार में नहीं, आप उससे अपने आप को दूर कीजिए, औज़ुबिल्लाह पढ़िए, ठीक है। अब असल बात यह कि खुद पैसे दे के कॉन्सर्ट्स रखने, बच्चों के वलीमों पे आपने गाने वालों को बुलाकर उल्टे सीधे काम किए, इसकी इजाज़त नहीं। तो गाने में दो चीज़ें याद रखें, एक तो हैजान, हैजान बर्पा करना, म्यूज़िक जिसको रियल म्यूज़िक आप कहते हैं, थ्रिल, इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। मोमिन का मिजाज ऐसा नहीं होता। आप देखिए कि हम यहाँ बैठे हुए एकदम कोई उठ के खड़ा होकर उल्टा सीधा हिलना जुलना शुरू हो जाए, हमें तो फिक्र लग जाएगा ना कि इसके कपड़ों में कोई चुंटी तो नहीं चली गई। कोई बैठ कर एकदम आवाज़ें मुझे हा हू ही करे, म्यूज़िक में क्या होता है? ये चीज़ें पसंदीदा नहीं हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि इस मौजू पे बात करने से पहले दिलों को तो तैयार करो। अक्सर बच्चे म्यूज़िक सुनते हैं और माँ बाप उनसे नाराज़ होते हैं। आप कैसे तमाम बच्चे, मैं उन सबको भी कहूँगी कि आप नंबर एक कुरान की तिलावत अच्छी सी आवाज़ में सुनिए, कुछ दिन सुनिए, कोई नशीद चला दें, आप देखेंगे कि मिजाज बनता जाएगा, चीज़ें ठीक होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपको फिर भी म्यूज़िक ही सुनना है और वल्गर सुनना है, और उसमें जो झूठ सच है कलाबे मिलाए जा रहे हैं। पीछे हमने शोरा की बातें भी पढ़ी कि वो बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। तो आप सोचिए, क्या मैं अल्लाह के लिए ये नहीं छोड़ सकती? दुनिया में कुछ नाम ऐसे हैं ना कि जिन्होंने गाना बजाना छोड़ा, अल्लाह ने उनको कितनी फिर खैर भी दे दी। तो बहरहाल ये आपके दिल के फैसले हैं। अगर अभी आपका दिल नहीं भी आ रहा इसको छोड़ने पे, तो कुरान सुनना तो शुरू कीजिए, अल्लाह ताला खुद बहुत दिल में खैर डाल देगा। फिर आगे आए 10 से 11 में तख्लीके बारी ताला के शाहकार हैं कुछ, और उसमें खलक़ समावाति बग़ैरी अमदिन तरउनहा। कभी आपने इन आसमानों को देखा और इस आसमान के नीचे कोई पिलर दिखे? आप जहाँ भी बैठे हैं आपके इर्द गिर्द दीवारें हैं ना, कोई बहुत बड़ा हॉल हो तो बीच में पोल पिलर्स हैं, आसमान के नीचे पिलर किधर हैं? फिर अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ों को कर दिया ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक ना जाए। ज़मीन में दबीब यानी चलते फिरते क्रिएचर्स हैं। आसमान से बारिश उगा दी, आसमान से बारिश आई जिसने सब्ज़ा उगा दिया। तो अल्लाह की कायनात में ये इतनी अनयूजुअल चीज़ें हैं, हम रोज़ चूँकि देखते हैं तो मुतासर नहीं होते। यहाँ कोई आकर कोई तमाशा दिखाने लग जाए ना बंदर का, तो हम उसको देखने लग जाएंगे। कोई शो दिखा दे, कोई अपने हाथ के करतब दिखा, कि कितना बड़ा काम किया उसने, देखें वो कबूतर निकाल दिया, वो अंडे में से चूजा निकाल दिया। अल्लाह जो करता है मुझसे क्यों नहीं जान मुतासिर होते? इसीलिए कहा हाज़ा खल्कुल्लाही फारूनी मा हाज़ा खल्कल्लज़ीना मिन दूनी। ये तो अल्लाह की तख्लीक है, मुझे दिखाओ तो सही कि उन्होंने क्या पैदा किया है जो अल्लाह के सिवा है। तो मुराद ये है कि अल्लाह से इम्प्रेस हो जाओ। आगे जी हज़रत लुकमान की हकीमाना नसीहतें 12 से 19 में। बेसिकली इन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, और इंसान अपनी औलाद के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होता है। अगर आप पूरा भी इनका खोल कर देखें ना, वलक़द आतैना लुकमान अल-हिकमा अन इश्कुर लिल्लाह, पहली चीज़ उनका तज़किरा किस चीज़ से हुआ? नंबर एक हिकमत से। लफ्ज़ हिकमत उनकी वजह पहचान बन गई, इसीलिए तो इनको हकीम कहते हैं। फिर दूसरी बात है शुक्र। आप अगर अपने बच्चों को नसीहत करना चाहते हैं, और देखिए छोटे बच्चों को तो हम नसीहत कर ही लेते हैं, कुछ डांट डिपट करते हैं, कुछ वो बेचारे भी दुबक जाते हैं, सहम जाते हैं हमारी ज़रा सी ऊंची बात सुनकर। जूं जूं बच्चा बड़ा होता है और जब उसका कद आपके कद से ऊंचा होने लगे, बच्चे नहीं सुनते। हर तरफ आ जाइए पुकार, हमारी बात नहीं सुन, बच्चे नहीं सुनते, डोंट वरी, आपको देख रहे हैं। सुन नहीं रहे ना, तो वो देखते तो हैं। माँ बाप जितना खुद अल्लाह से जुड़ते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चों को भी अल्लाह ताला वैसे ही बना देता है। और आप देखिए कि शुक्र के साथ ही कुफर, और फिर उसके बाद ला तुशरिक बिल्ला, पहली चीज़ शुक्र के बाद शिर्क है। आप लफ्ज़ों को ज़रा सा हिला जुला कर इधर उधर कीजिए। शिर्क, शीन रॉ काफ, अब इन्हीं लफ्ज़ों को बदलिए शीन काफ रॉ। क्या हुआ? जब शुक्र नहीं होता ना तो शिर्क होता है। जब लोग अल्लाह का शुक्र करने लग जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी से शिर्क निकल जाता है। तो अकायद की दुरुस्तगी पहले ज़रूरी है, अपने बच्चों के भी और अपने। शिर्क ना करना, क्योंकि राय बराबर अमल भी छुपा नहीं रहेगा, इसमें आखरत की बात है। यानी अपने बेटे के अकायद दुरुस्त करें। और आपको मुझे इसमें असल में मैसेज दिया जा रहा है, बच्चों का या अपना या किसी दोस्त का, अगर किसी को भी तुमने दीन की कोई दावत देनी है, तो साइड की चीज़ों की बजाय सबसे पहले ताल्लुक बिल्लाह को देखो कि उसमें क्या खराबी है, और फिर मरने के बाद जीना उसकी बात करो। फिर आगे देखिए अकीम सलाह, बेटे को कहते हैं बेटा नमाज पढ़ो, वामुर बिल मारूफ नेकियों का हुक्म दो, वनहा अनिल मुनकर और बुराइयों से रोको, और वसबिर और सब्र करो। अब आप देखिए कि छोटे बच्चों को अब किस सब्र की दावत दे रहे हैं? बच्चों के छोटे छोटे काम, भाई ने कैंडी ले ली, रोने लग गए, वो उसने मेरी प्लेट में से क्यों खा लिया। आप ये आयतें पढ़ के बच्चे को बड़े प्यार से मोहब्बत से अच्छे तरीके से, सब्र ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने आपकी चीज़ ले ली, कोई बात नहीं दे दो। यानी बच्चे को जितना छोटी उम्र में आप गाइड करेंगे उतना उसको फ़ायदा होगा। फिर आप देखिए आगे बॉडी लैंग्वेज की बात है, वला तुसा इरखद दकल नास, मुंह फेर कर बात ना करो, मुंह ना फुलाओ, लोगों से उखड़े उखड़े मत रो, क्योंकि ये तकब्बुर की बात है, इसमें अखलाकियात है। पहले अकायद की बात हुई, अब अखलाकियात सिखाए जा रहे हैं। फिर वला तमशी फिल अर्दी मा रहा, चाल में इतदाल रखो, अकड़ कर चलने से मना किया गया। चाल में म्याना रवि होनी चाहिए, बावकार चाल होनी चाहिए, मिस्कीनी वाली और मरियल चाल नहीं होनी चाहिए। मोमिन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन अकड़ के नहीं चलना, सीने पे हाथ बांध के नहीं बैठना। और आप याद रखिए कि हमारे यहाँ एक वक्त था कहते थे चाल चलन, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो लड़के का चाल चलन अच्छा है अच्छा नहीं है। तो चाल चलन में इंसान की डे टू डे एक्टिविटीज़ भी आती हैं। फिर देखिए बच्चे को बोलने का तरीका सिखा रहे हैं, वाह दो मिन सौतिक, आवाज़ को धीमा रखो। क्या पता चला, आवाज़ में इतदाल होना चाहिए, ज़रूरत के मुताबिक ऊंची नीची हो, उसमें इमोशन हो, जज्बात हो, लेकिन सिर्फ चिल्ला के बात करना, गुस्से में बात करना ये पसंदीदा नहीं, क्योंकि इन अन करल अस्वात इला सौतुल हमीर, आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। अब गधा बोले वैसे तो ठीक है, लेकिन अमूमन देखिए कि गधा बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है। अब एक इंसान जब इस तरह बोलेगा तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। मुराद क्या कि झगड़ालू अंदाज नहीं होना चाहिए, खफगी का इजहार ना हो। हर वक्त लोग ना ऑफेंसिव हो रहे हैं, आपने मेरे से ऐसे किया, आप तो करते ही ऐसे हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है। फिर आप देखिए कि शिकायती अंदाज नहीं होना चाहिए, जोर लगाकर बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों को ये सारे मैनर्स जितनी जल्दी सिखाएंगे इतना आसानियों से सीख जाएंगे। तो बच्चों को नसीहत करने का अंदाज क्या है, प्यार भरा, खशियत इलाही का एहसास हो, जवाबदेही का एहसास हो, अल्लाह की मोहब्बत डालिए अपनी औलादों के दिलों में। फिर मामलात में इतदाल सिखाइए और आगाज़ करेंगे अकीदे की दुरुस्तगी से। अगर छोटे बच्चों के साथ मेहनत कर ली जाए तो बड़े होने पे ज़्यादा गम नहीं सहने पड़ते। फिर चूँकि लुकमान एक मर्द थे तो यहाँ बच्चों की परवरिश में बाप का अहम किरदार दिख रहा है। आप देखिए कि माँ बहुत कुछ करती है, लेकिन बाप का भी बड़ा अहम है रोल। अफसोस की बात है कि आज हमारे मर्दों में अमूमन कमाने का रुझान इतना है कि बच्चे को वक्त देना, उससे बात करना, ये तो है ही नहीं। तो फिर चाल में इतदाल कैसे आएगा? आप देखिए कि जब माँ बाप खुद अपने ऊपर नज़र डालें तो अभी तक तो उनकी अपनी भी इसलाह नहीं हुई, अभी तो उनके अपने बोलने के अंदाज़ ठीक नहीं हुए, तो बच्चों के कैसे होंगे? फिर इसी तरह आप देखिए चाल में इतदाल है तो सवारी की चाल में भी इतदाल रखिए, बेटा तेज़ गाड़ी ना चलाना, बेटा ऐसे ना करना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुछ और चीज़ें हैं, दूसरों से बात करने का अंदाज़ पुरवकार और तकब्बुर से पाक हो। आप देखिए कि बच्चा जितना बादब होगा ना उतना प्यारा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे जी ऐसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो कितना प्यार लेते हैं, तो बादब बानसीब। कैसे, वो एक शेर है ना कि तुझे आवाज़ से अपने कोई नस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। क्या पता चला कि बादब बानसीब। तो अच्छे आदाब सिखाइए अपनी औलादों को। आगे आए 20 से 22 है, अल्लाह ताला के एहसानात और बंदों के दो किरदार आ रहे हैं हमारे सामने, और वो क्या है कि अल्लाह ताला तो आसमान और ज़मीन तुम्हारे लिए मुसख़्खर किए हुए हैं, उसने तो तुम्हें बहुत सारी नेमतें दी हैं, लेकिन लोगों में एक क्या है, वमिनन नासी मै युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, बेइल्म झगड़े करने वाला, वला खुदम वला किताब मुनीर, ना हिदायत उसके पास ना किताब है। और जब कहा जाए कि अल्लाह के नाजिल करदा की पैरवी करो, कहते हम तो वही करेंगे जब मैं अपने बाप दादा को करते पाया। अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तुम उनकी बात मानते हो, अगरचे शैतान उनको पुकारता हो जहन्नम के अजाब की तरफ भी। तो ये था किरदार, बाप दादा का नाम लेकर गलत काम करने वाला। इसके बरक्स दूसरा किरदार, व मैं युस्लिम वजहहू इलल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह मैं इसमें शामिल कर ले, जो अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दे और वो हो भी मुहसिन, फ़क़द इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्का। सूरह बकरा में भी आप पढ़कर आए आयतुल कुर्सी के बाद, यहाँ फिर ये बात आ गई, फरमाया ऐसा शख्स है जिसने एक मजबूत कड़ा पकड़ लिया और अल्लाह की तरफ ही सारे कामों का अंजाम है। तो क्या पता चला कि अच्छा किरदार बनाकर दुनिया से जाना है, ना कि खराब। और फिर आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई है आयत 23 से 24 में, कि कोई बात नहीं, ये कुफर कर रहे हैं, ना शुक्री कर रहे हैं, डोंट वरी। फमन कफरा फला यखजुन का कुफरहू। अब यहाँ लफ्ज़ यखजुन को देखिएगा, हुजन। नबी सल्लम के आगे बड़ी मुमारी करते थे, कभी आपको मजनू कहते, दीवाना कहते। पीछे सूरह हिजर में तो आप पढ़ भी चुके ना कि इन्नक ल मजनून, आप तो जी मजनू हैं, दीवाने हैं। अब माँ नबी का मैं किरदार मुकाम देखिए और उम्मत का। इसी तरह कभी कभी हमारे बच्चे हमारे आगे बदतमीजी कर देते हैं, कभी कभी शौहर बदतमीजी कर देते हैं, कुछ बीवियाँ भी ऐसी सरकशी वाली होती हैं। तो अल्लाह ताला इन आयात में तसल्ली क्या दे रहे हैं, अगर किसी बंदे से आपको कोई ऐसी बात सुननी पड़ जाए, सब्र कीजिए, थोड़े से दिन की बात है, फिर आखिर में सब ने अल्लाह के सामने पेश होना है। और फिर आगे आए 25 से 32 में अजमते बारी ताला का तस्करा। बिल्कुल यही अंदाज आपने सूरत अलकहफ के आखिर में भी देखा था कि अगर वलवन्नम फिल अर्द मिन शजरतिन अक्लाम, सारे दरख्त लकड़ियाँ बन जाएँ, यानी सारे दरख्त कलम बन जाएँ, वल बहरु या मुद्दुहु मिन बादी ही, और सारे दरियाओं का पानी स्याही में बदल जाए, और तुम रब की बातें लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। फिर आगे पैदाइश की बात करने के बाद यूलिजुल लैल वन नहार, यानी 29 से 32 में यही सारा प्रोग्राम जमा होता है। पता क्या चला कि अल्लाह की नेमतों में बैठे हुए हो, फिर भी तुम जब दरियाओं में फंस जाते हो तो भुला कर सबको सिर्फ रब को याद करते हो, और जब वापस दुनिया में आते हो तो फिर वही नाफरमानियाँ करते हो। इसलिए फिर आगे आए 33 में है, डरो इस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। या अय्युहन्ना सुत्तकु रब्बकुम, ए लोगो डर जाओ अपने रब से, और डर जाओ उस दिन से जिस दिन ना कोई बाप काम आएगा बच्चे के, और ना बच्चा उसकी तरफ से झगड़ने वाला होगा, ना अपने बाप की वो कुछ करेगा किफ़ायत। और अल्लाह का वादा सच है, और तुम्हें धोखे में ना डाले दुनिया की ज़िंदगी, और ना तुम्हें अल्लाह से धोखे में डाले कौन, अल गरूर। ये लफ्ज़ जो अल गरूर है ना, ये शैतान का नाम है। अब देखिए अल्लाह ताला के नाम है ना, अल गफूर, अल वदूद, अर रहमान, अर रहीम, तो ये उसी वजन पे देखिए, बहुत बड़ा धोखेबाज, खुद भी धोखे में और दूसरों को भी धोखे में डालेगा। और फिर आखिर में 5 बातों के ऊपर सूरत पूरी होती है, जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। आयत 34 में 5 चीज़ें कौन सी हैं, नंबर 1 क़्यामत कब आएगी, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस सा, दूसरी बात बारिश कब होगी, माँ के रहम में क्या है, और कोई नफ्स किस ज़मीन पे मरेगा, और उसने कल क्या करना है। हम सब इतने कमज़ोर हैं कि हमें खुद नहीं पता कि कल एन इस वक्त हम कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। तो पता क्या चला कि उस अल्लाह के आगे झुक जाऊँ। फिर आ गया जी सूरज सजदा, जिसके बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इसको पढ़े बगैर सोया नहीं करते थे। ओनली 30 आयतें हैं इसकी, और मज़े की बात देखिए कि इसकी भी 30 हैं और सूरत मुल्क की भी 30 हैं, और ये दोनों अल्लाह के नबी रात को पढ़ते थे, और महीने के दिन भी 30 होते हैं। कोई ना कोई हिकमत तो होगी ना। फिर आप देखिए कि नमाज के मुख्तलिफ अरकान है ना, सजदा उसमें से एक रुकन है। रुकू नाम की सूरत नहीं है, क़याम नाम की सूरत नहीं है, लेकिन सजदे की है, क्योंकि सजदे में बंदा अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। पहली 3 आयतों में अजमत कुरान हकीम है कि कुरान कितनी अजीम चीज़ है, और बिल्कुल वही अंदाज़ है जो सूरत बकरा के शुरू में था। फिर आयत 4 to 5 में अल्लाह के खालिक और मुदब्बिर कायनात होने का जिक्र है, यानी तदबीर करने वाला, कि इंसान कि इस कायनात में जो कुछ है उस सब की मैनेजमेंट अल्लाह के हाथ में है। और फिर ज़रा आगे जाते हैं तो आयत 6 से 9 में अजमत इंसान, पहले क्या है अजमत कुरान, फिर अजमत रब्बी, फिर अजमत इंसान। क्या पता चला कि इंसान अपने मुकाम को पहचान, अल्लाह ने तुझे पैदा किया है तो तू कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। फिर इंसान की तख्लीक का जिक्र है, कैसे एक हकीर पानी की बूंद से अल्लाह ने इंसान को हंसते बसते इंसान और खूबसूरत बच्चे की सूरत में दुनिया में भेज दिया। और आगे फिर आयत 10 से 14 में मुजरिमों का रोज़े क़्यामत बुरा अंजाम, अल्लाह हमें जुर्म से बचाए और हम ऐसे काम ना करें कि जिसके बाद कल शर्मिंदगी हो, और इनका बुरा अंजाम पीछे भी पड़ा आगे भी पढ़ेंगे। आगे खूबसूरत सी आयत है 15 से 19, शब बेदारियों और क़ुरबानियों का सिला तसव्वुर से बालातर। अब तो शब बेदारियाँ भी करते हैं, रमज़ान की रातें, जागने की रातें, सारी सारी रात लोग क़याम में खड़े रहते हैं, और मैं देखती हूँ सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग तरावी में, और अगर कुरान पढ़ने की दावत दी जाए तो गिनती के चंद लोग। अच्छा, वहाँ भी देखा गया कि जब कुरान की तिलावत हो रही है तो सब खड़े हैं लाइनों में, और बीच में बेचारे पढ़ा रहे होते, तफसीर का दौर कर रहे होते, औरतें बातें 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 कर रही। मुझे इत्तेफाक हुआ कुछ जगह रमज़ान में जाने का रातों में, तो मैंने क्या देखा कि हमारी कौम का इस वक्त शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। ये तो आप जैसे लोग दो दो तीन तीन घंटे पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठे रहते हैं, और कहा भी जाए शेयरिंग करें तो नहीं करते। और मुझे इतनी कमी महसूस हो रही थी कि अल्लाह कभी ऐसी जगहों पे दौरे कुरान का कोई इहतमाम करा दे, और उस माहौल में जिसमें हम बैठ के बात करते हैं, बेकार बातें कर रही, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कहानी है, कोई कुछ, वो बेचारे बीच में गैप देते हैं, चाय भी आपको पिला रहे होते हैं, सुनते नहीं, और खूब बातें खूब, और साथ तर्जमा भी चल रहा होता है लोगों का, यानी तर्जमा चल रहा है, लेकिन चूंकि मर्दों में से आ रहा होता है ना, तो औरतें फोकस नहीं होती। अगले सालों के लिए औरतों का अलग रखिए, माहौल बना कर रखिए, फिर आप देखें कि क्या तासीर है। और फैमिलीज के साथ औरतें आती हैं तो ज़्यादा आती हैं, रात के वक्त में औरत अकेली तो नहीं आएगी ना, या कम आएगी। तो बहरहाल अल्लाह ने इधर क्या कह दिया, फ़ला तआलमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, शर्त एक है कि ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजी, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग होती हैं, वो रब को पुकारते हैं खौफ और तमा से, और जो रिस्क हमने उनको दिया उसको खर्च करते हैं। और इससे पहले आपने देखा है कि आयते सजदा भी है, तो क्या पता चला कि वहाँ जाकर जो मिलेगा, अगर आज तुम्हें उसका ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए, तो तुम्हारे बिस्तर तुमसे अलग हो जाए, करवटों से अलग हो। लेकिन इसमें फिर गौर व फिक्र, तदब्बर, और इसी तरह आगे फिर मोमिन और फासिक का तकाबुल किया, और आयत नंबर 20 से 22 में बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब तो आते ही हैं। क्या पता चला कि हमें दुनिया में ही अपने बहुत सारे गुनाहों की सज़ा मिल जाती है। ये जुमला भी समझ लीजिए, अल्लाह ने जिस बंदे को पाक करना होता है, नेक है, दिल का अच्छा है, इबादत गुजार भी है, लेकिन कमी है, कहीं अखलाक की कमी, कहीं कुछ। और इधर एक और छोटी सी बात बताऊँ, बहुत ही पते की बात है, इसके बाद इंशाल्लाह सुनने वाला किसी दूसरे पे जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। एक मर्द है, गुस्से का तेज़ है, ज़ुबान का भी सख्त है, बीवी के ऊपर बात बेबात बात करता है। अब वो बेचारी क्या बोलेगी, जिसको पहले कह दिया गया था चुप करके सुनना जो भी वो कहेगा। अब क्या हुआ कि वो कभी हक और कभी ना हक अपनी बीवी को सताता है। अल्लाह कल किसी औलाद के गम में डालकर वो बदला लेता है, यानी कई दफ़ा बेटियों के गम हमें हमारी अपनी बीवियों पे की हुई ज्यादतियों की वजह से आते हैं। अल्लाह हम सबको बचा के रखे। तो क्या पता चला कि दुनिया की तकलीफ़ें आखरत में पकड़ से बचाएंगी। फिर इमामत का एजाज़ किसे हासिल होता है, आज 23 से 27 है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का तذکرہ करके और कुछ पिछली कौमों के तबाह होने की बात करके अल्लाह ताला ने ये बता दिया, वजालनाहु हुदल लिबनी इसराइल वजालना मिनहुम अइम्मतन यहदून बि अम्रिना लम्मा सबरू, यानी सब्र करने वालों को और अल्लाह की आयतों पे यकीन रखने वालों को अल्लाह ताला इंसानों के लिए लीडर और इमाम बना देता है। फिर आयत 28 से 30 में नबी सल्लम को बेनियाज होने का हुक्म दिया, और आपको मुझे भी, कब, जब हालात आपके बस में ना रहे। आप देखिए कि हम कभी कभी तकलीफ़ में होते हैं ना, तो हम दिल को रोग लगा लेते हैं, लोग कहते हैं शुगर हो गई, गम में सह पड़ गए, कभी ब्लड प्रेशर, कभी हार्ट डिजीज़ हो गई। नहीं, जब आपके हाथ से चीज़ें बाहर होने लगें तो बेनियाज हो जाए, छोड़ो ना, दुनिया ही है ना, 4 दिन की बात है, अल्लाह आखरत अच्छी कर दे। तो बहुत ही प्यारा पैगाम, जिस पे हम रात को अगर सोते में तर्जमे पे भी गौर कर रहे हों तो हम भी बेनियाज होके सोएंगे। कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, सबको माफ़ करके सो जाओ। और आगे फिर सूरत अल अहज़ाब का कुछ हिस्सा, यानी शुरू की 30 आयतें इस बारे में हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सूरत है। एक जंग के नाम पे ये सूरत है, अहज़ाब के नाम पर एक जंग हुई थी, गिरोहों को कहते हैं, बड़ा जलाली असलूब है, यानी जलाल के साथ अहकाम शरीयत पर अमल करने का हुक्म है सूरत के शुरू में। और ये वो वाहिद सूरत है जो इस तरह से शुरू हुई है कि जिसमें या युहन नबी कहा गया। आप देखिए, या युहल मुजम्मिल, या युहल मुद्दसर और या युहन नबी, तो या युहन नबी के स्टाइल में शुरू होना इसका अनयूजल है। कोई तमहीद नहीं, कोई इसके शुरू में कुरान की बात नहीं, कोई हरूफ मुकत्तात नहीं है, और बात के वत्त भी मायू है इलई का मे रबिक। कभी कभी आप बच्चे को कहते हैं ना, मानना पड़ेगा, हाँ, तो कभी कभी अल्लाह ताला ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं कुरान में कि हम पढ़ने वालों को अपने लिए उसमें सीधी सी बात मिलती है कि मानते हो कि नहीं मानते। और फिर आगे दो सख्त अहकाम शरीयत हैं आयत 4-5 में, जिसमें नबी सल्लम को एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया गया। चूंकि आप नबी थे, आपके ज़रिए से शरीयत को सेटल डाउन किया जा रहा था, तो इसमें फिर एक ऐसा वाक़या जो सरासर आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक था, लेकिन उसको लिया, और एक इज़हार का कानून है जिसको आगे हम इंशाल्लाह सूरह तो मुजादिला में भी पढ़ेंगे। बीवी को माँ कह देना, यानती अलैया का ज़ाहरी उम्मी, तू तो मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह है, यानी ज़ुबान से ज़रा सी बेकार बात निकाली और उसका कफ़ारा कितना है वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नबी सल्लम मोमिनों के लिए उनकी जानों से बढ़कर है, ये पैगाम है आयत 6 का, अन नबी अउला बिल मोमिनीन। अउला कहते सबसे करीब। हज़रत उमर ने जब एक मौके पे कहा, अल्लाह के नबी आप मुझे हर चीज़ से प्यारे हैं, हम मेरी जान से प्यारे नहीं हैं। वो तो सच बोलते थे, हम तो पता नहीं क्या कुछ कह देते। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ईमान पूरा नहीं होगा जब तक मैं किसी को उसकी जान से भी प्यारा ना हो जाऊँ। एक रिवायत में आता है उसके बेटे से, उसके माल से। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप अल्लाह के नबी के लिए क्या छोड़ सकते हैं। फिर अम्बिया कराम से एक खसूसी अहद का तस्करा है आयत 7-8 में, जिसमें असल में तो अल्लाह के नबी सल्लम के नबूवत को मानने की बात है। यानी हर नबी से ये वादा लिया गया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आ गए तो आप उनको मानेंगे और अपनी शरीयत को छोड़ देंगे। यही ये अहद फिर नबी अपनी उम्मतों को भी देकर गए, और आज इसी अहद के तहत सब मज़ाहब, जो चाहे यहूद हैं या नसारा, उनको अल्लाह के नबी पर ईमान लाना लाजिम है, क्योंकि उनकी किताबों में ये वादा लिया गया। आगे है सूरत के नाम की तरह वजह तस्मिया अल-अहज़ाब, ग़ज़वे अहज़ाब था। अब इस पे इजमाली तबसरा है आयत 9-11 में, या अय्युल्लज़ीना मनस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इस जात कुम जुनूदुन फरसलना अलैहिम रीहम व जुनूदल लम तरौहा। हालांकि नबी की ज़िंदगी में बहुत सारे जो ग़ज़वात हुए उसमें एक ग़ज़वे अहज़ाब था, ये बड़ी हद फासिल है। इसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा अब हम जाएंगे। इससे पिछली सारी जंगें वो कौन सी थी, डिफेंसिव, दिफाई जंगें थी। दुश्मन आता था और मुसलमान दिफा करते थे, और इस जंग में एक खंदक खोदकर सलमान फारसी के मशवरे पर अल्लाह ताला के नबी ने ये जंग ऐसे अल्लाह की रहमत से बग़ैर तीर तलवार तोड़े जीत ली कि जिसकी अरबों में कोई मिसाल नहीं थी। पढ़ने के लायक है, मैं आप सबको दावत दूंगी कि आप सीरत पढ़िए। मुलाहमात कहते हैं जंगों के किस्सों को, तो जंगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर इसमें मुनाफिकीन का भी तस्करा ज़रूर आता है, इसलिए आगे आए 12-15 में मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल। और हर जंग में ऐसे ही है, पीछे तबूक के सफ़र में आपने देखा, आले इमरान में देखा कि कैसे ग़ज़वे उहद के मौके पे अब्दुल्ला बिन उबई हलाक हुआ। तो असल बात यह है, अमली तौर पे जो 19-20 होता है ना, वो इसलिए होता है कि अल्लाह देखना चाहता है कि कौन इस बात पे, इस मौके पे इस्लाम के साथ कितना मुखलिस है। फिर आज 16-18 का टॉपिक है, क्या महाजे जंग से फरार मौत से बचा लेगा। कुल लयन फौकुमुल फिरार। आज बहुत सारे लोग मैदान जंग में जाने को बाज लोग मौत समझते हैं। अल्लाह कह रहे अच्छा क्या सारे मैदान जंग में ही मरे? नहीं मरे, क्या पता चला कि जहाँ मौत आनी है वो आएगी। फिर आगे मुनाफिकत का सबब माल और जान की मोहब्बत। याद रखिए, मुनाफिक को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी जान और अपने माल से होती है। तो यहाँ उनके कुछ फेस एक्शंस और उनकी कुछ चीज़ों को बुनियाद बनाकर बता दिया गया कि ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें अल्लाह के रस्ते के तकाज़ों से रोक लेती हैं। फिर आगे नबी सल्लम को एक बेहतरीन नमूना साबित किया गया है 21 में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। कैसे है अल्लाह के नबी बेहतरीन नमूना? आप देखिए कि अल्लाह के नबी के तौर तरीके पे हम चलें तो सबसे पहले इबादत, सल्लु कमा राई तुमोनी उसल्ली, तुम वैसे नमाज़ पढ़ो जैसे मुझे नमाज़ पढ़ना देखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम तो आज है, हर एक अपनी सोच और अपने दलाइल की बुनियाद पे नबी के तरीके पे ही नमाज़ पढ़ता है। लेकिन दूसरा तरीका अखलाक में, क्या हमारा अखलाक नबी वाला है? फबिमा रहमत मिनल्लाह लिनत लहू, नरम मिजाज हैं, नरम है, सॉफ्ट स्पोकन है, फज तो नहीं, गलीजुल कल्ब तो नहीं, ये हम सब सोचें। फिर ईमान में आप एक नमूना है हमारे लिए, क्या आपका ईमान जो है वो हमारा ईमान, उसका कोई हल्का सा पेल रिएक्शन भी शो करता है। फिर दुनियावी मामलात में अल्लाह के नबी नमूना है, इस पे एक बुक है राहबरे कामिल, 19 डिफरेंट एंगल है अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के, इसको पढ़िए या सुनिए। हमने दो दफ़ा पढ़ी है अभी रिसेंटली, से मुराजे के कोरोना के दिनों में इसको पढ़ा था। यकीन करें, इसको पढ़ने के बाद लगता है कि अल्लाह के नबी वाकई एक रोल मॉडल थे, और फिर सबसे बड़ी बात है कि आखिरत के मामलात में, इसमें भी अल्लाह के नबी की ज़ात हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। कल अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे उम्मतियों को, फिर गज़वे अहज़ाब के मौके पे सच्चे मोमिनों का क्या तर्ज़ अमल था, इसको पढ़ना हो तो आयत 22 से 24 को जाकर पढ़िए, इसकी तफसीर सुनिए। ख़ास तौर पे अल्लाह ने इसमें उन लोगों की तारीफ़ फरमाई है कि जिन्होंने अच्छी नीयतें करके अपने आप को बदला नहीं बल्कि उसी चीज़ पे जमेरे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम करेंगे ये नीयत है, ये कराएंगे, वो कराएंगे, वक्त पड़ने पे लोग मजबूरियों का शिकार हो चुके होते हैं। फिर आयत 25 में कुफार के लश्करों की जिल्लत आमेज़ शिकस्त, नबी सल्लम के कुछ असबाब नहीं थे और उस दौर की सुपर पावर सारी मिलके इकट्ठी आई थी कि एक दफ़ा मुसलमानों को ख़त्म करें, बाल का बीका ना कर सके। और फिर उसके बाद एक और जंग जो उसके बाद हुई थी बनु कुरैज़ा, उनकी जिल्लत आमेज़ तबाही का तذکرہ है 26 से 27 है। असल में इन्होंने गदर किया था, इनको वादे के मुताबिक मुसलमानों पे हमला नहीं करना था, लेकिन जबकि मर्द सारे खंदक के ऊपर थे यानी सरहदों पे थे, तो पीछे से इन्होंने औरतों और बच्चों पे हमला किया, और इसीलिए फिर इस जंग के फौरन बाद गज़वा बनु कुरैज़ा हुई और अल्लाह के नबी सहाबा कराम के साथ उनकी घड़ियों में पहुंच गए। अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान दे दे। और फिर आखिर में 28 से 30 अजवाज मुतहरात का खसूसी मामला, या अय्युहन नबी यकुल्ली अजवाजिक, ए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुमको बहुत फ़ायदा दे देता हूँ लेकिन तुमको फिर बड़ा अच्छा रुख्सत भी कर दूंगा, यानी चीज़ें ले लो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखरत का इरादा करती हो तो फिर अल्लाह ने तो मुहसिनात के लिए बहुत बड़े अजर अजीम तैयार किए हैं, और ए नबी की बीवी और तुम में से अगर कोई फाहिशा का इर्तकाब करेगी तो फिर उसका गुना भी दूसरी औरतों से दुगना होगा। क्या पता चला कि जिनके दर्जे हैं सिवा उनकी मुश्किलें हैं सिवा। इंशाल्लाह इसी मज़मून पे अगला पारा शुरू होगा, हम उस पर बात करेंगे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।